ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग आज सिक्स कैंटो सेकंड चैप्टर और श्लोक नंबर है 24 और 25। अजामिलो अपि अथा कान्य दूतानां यमकृष्णयो धर्मं भागवतं सुदं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयम् भक्तिमान् भागवती आसु महात्मय श्रवणाद्रदे अनुतापो महानासे स्मरतो शुभम आत्मना।
श्रीमद् भगवद गीता दूसरी अध्याय की 45 में भगवान ने अर्जुन से कहा, त्रैगुणा विषय इस त्रैगुणा प्रवर्जना निदंग निश्चम आत्मवाद। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त वेदों हानि लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं की मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वैदिक सिद्धांत निश्चय ही आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने के लिए क्रमिक विधि की संस्तुति करते हैं, किंतु यदि कोई वैदिक सिद्धांतों में ही आसक्त रहते हैं तो पूरे आध्यात्मिक जीवन तक उठ पाने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए कृष्ण अर्जुन को भक्ति करने की ही सलाह देते हैं, क्योंकि दिव्य धर्म की यही विधि है। भक्ति के दिव्य पद की पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी पहला अध्याय की पहला स्कंद दूसरा अध्याय की सातवें श्लोक में कही गई है, सभी पुंसों पर धर्म जात भक्ति तदव कर। भक्ति पर धर्म अर्थात दिव्य धर्म है। यहाँ कोई भौतिक धर्म नहीं है। सामान्यतः लोग यही सोचते हैं कि धर्म का पालन भौतिक लाभ के लिए करना चाहिए। यह उन लोगों के लिए है उचित हो सकता है जो भौतिक जीवन में रुचि रखते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हो उसे पर धर्म अर्थात उस धर्म के प्रति अनुरक्त होना चाहिए जिससे मनुष्य परम भगवान का भक्त बनता है। भक्ति भगवत धर्म यह शिक्षा देता है कि भगवान तथा जीवों में नित्य संबंध है और जीव का कर्तव्य है कि वह भगवान की शरण ग्रहण करे। जब कोई व्यक्ति भक्ति के पद पर स्थित होता है तो वह सारे अपराधों से मुक्त हो जाते हैं पर और पूर्ण तुष्ट हो जाते हैं। इस पद तक ऊपर उठकर अजामिल अपने विगत भौतिकतावादी कार्य के लिए पश्चाताप तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम यश रूप तथा लीलाओं का गुणगान करने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक भक्ति
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रश्चत देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग प्रेम से और प्यार से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहीं बातें बताते हैं जो हमें करनी चाहिए, कहीं जो हमें अपनानी चाहिए। एक तो जो सबसे उत्तम चीज़ बताते हैं कि हमें आत्मपरायण बनना है, देहपरायणी। कितने लोग समझते हो कि आप लोग आत्मपरायण कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो? कितने लोग देहपरायण में डूबे हुए हैं? दो दो हाथ उठा रहे हैं। और आगे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत का कोट बताते हैं कि सवै पुंस परो धर्म यतो भक्ति अधोक्ष जे भक्ति परो धर्म। ये बताते हैं कि अर्थात दिव्य धर्म, हमें दिव्य धर्म की तरफ जाना है, ना कि हमें भौतिक धर्म की तरफ डूबना है। और आगे जाते हुए प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जो भी इस रास्ते इस मार्ग पर चलता है तो उनका अवरोध से मुक्त हो जाना निश्चय है। तो ये सब समझने की बात है। देखो अगर हम अजामिल की तरह हैं तो हमें उसमें से बचने का है, किसी न किसी तरह हमें उसमें से बाहर निकलने का है। प्रभुपाद जी एक कोट देते हैं जिसमें बताते हैं कि कर्म कान ज्ञान कान सभी बेसर भान, ये जो कर्म कांड है ज्ञान कांड ये सब एक जहर की कटोरी की तरह है, तो हमें इनमें डूबना नहीं है। कर्म कांड है ज्ञान कांड से सबसे बचना है। आगे प्रभुपाद जी बताते कि अमृत बोलिया जेबा खाई नाना योनि ब्राह्मण करे, कि जो लोग इन ज्ञान को अमृत समझ के खा रहे हैं तो कहीं योनियों तक भटकते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे। हमें भी नहीं मालूम कि हमने कितना भ्रमण किया है। किसी को याद है कि पिछले जन्म में आप कौन थे? उसकी पहले के जन्म में नहीं कभी रिग्रेशन नहीं करवाया कभी हिप्नोटाइज नहीं हुए? कभी कभी उसमें पता लगता है, लेकिन हमें उस मार्ग पर नहीं चलने का है, हमें आगे मार्ग पर चलने का है। और कार्दज आहार करे तार जन्म अध पते जाए, जो इसी मार्ग में डूबा रहता है और नरक खांड में डूबा रहता है। जैसे एक बार इंद्र भी नरक खांड में आ गया था ना, स्वयं ब्रह्मा जी को आकर उसको बचाना पड़ा। तो ऐसे नरक से हमें बच के रहना है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास हर जीवात्मा के लिए टाइम नहीं कि बार बार नीचे आएंगे, चलो तुम भी चलो। तो इन चीज़ों से बचना है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो सदाचार है ना, सदाचार बन के हमें रहना चाहिए, असदाचार से बचना चाहिए। असदाचार का मतलब कि जो जिसमें सत्संग नहीं है, जिसमें भक्तों का संग नहीं मिलता है, उसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। असदाचार से हमें हमेशा बचना चाहिए। इस विषय में हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो भी भक्तिविनोद ठाकुर हमें समझाते हैं। सब लोग बोलिए, कबे हबे बोलो से दीन अमार अपराध गुच्छी सदा नाम रुचि कृपा बाले हबे हृदय संचा। ये भी आप लोग हमारे साथ में दोहरा सकते हैं। वो दिन कब मेरा होगा, कब मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा, जब मेरे सारे अपराध मिट जाएंगे और मेरे मन और हृदय में हरि नाम के प्रति रुचि जागेगी और मैं आपका नाम शुद्धता से ले पाऊंगा। तो सदाचार करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जो भागवत सेवा में युक्त हो जाता है वही मात्र सदाचारी है। जैसे प्रभुपाद जी अपना खुद उदाहरण देते हैं कि मैं 1965 में बताते हैं एक प्रवचन में कि 1965 में जब वो विदेश गए तो वो सोच रहे थे कि मैं तो सदाचार करता आया हूँ, लेकिन वहाँ तो असदाचारी लोग हैं, राक्षसी लोग हैं। तो मैं जैसे मैं उतरूंगा और मैं अपनी कथा करूंगा तो लोग मुझे शायद यही बोलेंगे कि स्वामी जी आप वापस चले जाओ, यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ तो सब लोग मांस मदिरा पान करने वाले लोग हैं, तो यहाँ आपका कोई काम नहीं है। कहीं हमारे साधु संत लोग गए थे देश विदेश में, लंदन गए थे, यूरोप गए थे, अमेरिका भी गए थे, लेकिन कोई सफलता नहीं पाया, किसी ने सफलता नहीं पाई थी। शीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं जब टॉम्सकिन स्क्वायर पार्क में जाकर बैठा तो मेरे पास मृदंग भी नहीं था, मेरे पास एक डुगडुग था, बोलते उसको डुगडुग बोलते थे प्रभुपाद जी मेरे पास एक डुगडुग था, उस डुगडुग को मैं बजाता था और कीर्तन करता था। तो वो बताते हैं कि जब पहली बार उन्होंने कीर्तन किया तो आंख बंद करके बैठ के कीर्तन करना शुरू कर दिया, कोई था नहीं उधर, पार्क में बैठे थे है ना, जैसे अपना छोटा पार्क है, आप वहाँ जाकर भी बैठ जाओ कीर्तन करना, तो उसमें आनंद तो है लेकिन इतना आनंद नहीं है जितना भक्तों के साथ में हम संग करके कीर्तन करते हैं ना। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं वहाँ जब बैठा कीर्तन करना शुरू कर दिया तो थोड़ी देर में बहुत सारे लोग आकर बैठ गए, कुछ लोग ताली बजाने लगे। प्रभुपाद जी थोड़े रुके, सबको समझाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, मंत्र का मतलब क्या है, मन क्या है, त्र का मतलब क्या है। तो मन को मुक्त करने के लिए हमें ये त्र का उपयोग करना पड़ता है कि मंत्र जप करने से हमारा मन के अंदर जो सब चीज़ें भरी हुई है, ये सब चीज़ को सफाई करना है। जैसे हम बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, कि सब जो सफाई करनी है, सफाई किस चीज़ की करनी है, जिसमें हमारा मन असदाचार या तो देह प्राण की तरफ भाग रहा है, उससे हमें मुक्त होने का है। तो प्रभुपाद जी जब कीर्तन करने लगे तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले उनको ये भी याद है कि सबसे पहले कौन अमेरिकन भक्त खड़ा होकर नाचना शुरू कर दिया था। वो बताते हैं अपने लेक्चर में कि ब्रह्मानंद करके एक जिसको मैंने दीक्षा दी, वो लड़का खड़ा हो गया और कीर्तन में नाचने लगा। तो मुझे समझ आ गई कि अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा बरसना शुरू हो गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो बोलते हैं कि मैं जब कीर्तन करना शुरू कर दिए तो ये भक्त लोग एक उठा, उसके बाद अच्युत करके है थे वो उठ गए, उसके बाद और बहुत सारे लोग उठने लगे, फिर नाचने लगे। तो कुछ लोगों के भगवान की कृपा से उनके पास कुछ ऐसे बाजेंद्र थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, तो लोग अपना बिना की तरह जो वायलिन आता है, एक आदमी वायलिन बजाने लगा, तो नाचने लगे। तो वो शुरुआत होगी, तो प्रभुपाद जी को समझ आ गई कि अभी ये आंदोलन यहाँ से शुरू होएगा। ये भगवान ने उनको मार्गदर्शन दे दिया कि तुम आगे बढ़ो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वैसे तो एक बार उन्होंने सपने में राधा श्याम सुंदर जी ने आशीर्वाद दे ही दिया था, लेकिन ये एक जरिया था, उनको समझ आ गई कि यहाँ से भक्ति इन लोगों की शुरू होएगी। आगे जाते प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जो ये जो आंदोलन है ये आगे इन भक्तों के द्वारा ही चलेगा। मुझे इतनी श्रद्धा है भगवान में कि जो भगवान के नाम के द्वारा इन लोगों के अंदर भक्ति प्रकट हुई है तो ये भक्ति आगे चलती रही और बढ़ती रहेगी। और आज हम देखते हैं कि कितने लोग सारी दुनिया में इस मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। देखो अगर हम भक्ति करेंगे ना तो जैसे राक्षसी लोग हैं उनके बीच में भी हम लोग आएंगे, तो भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ढंग में अगर कोई आफती भी आएंगी तो भगवान हमें बचा लेंगे। लेकिन हमारा मन हमेशा शुद्ध मार्ग पर रहना चाहिए, हमें हमेशा शुद्ध भाव से सोचना चाहिए। जैसे एक बार राधा गोविंद महाराज जी बताते थे कि जैसे जैसे अजमेल की बात है, या तो कई कई की माता जी की बात है, या जो भी राक्षस की योनि में आते हैं, तो हमारी उनकी तरफ, हमें उनकी तरफ गलत भाव से नहीं देखना चाहिए कि तो अजामिल ऐसा था, कि कई कई ऐसी थी। ये सब लोग लीलाधारी है, ये लीला करने के लिए आते हैं भगवान के साथ में, ये भी भक्त है, सब महान भक्त है, लेकिन देखो आकर कितना कष्ट भी उठाते हैं सब हम जो जीवात्मे उनके लिए। ऐसे अगर कई कई माता ने अगर राम जी को वनवास में नहीं भेजा होता तो फिर ये सब राक्षसों का मतलब कल्याण कैसे होता, जो साधु संत था उनको आशीर्वाद कैसे मिलता, जो बांदर सेना थी उनकी महिमा कैसे आगे बढ़ती ना। तो जैसे अजामिल भी है, वो सब कुछ करता है, सब लीला करता है सिर्फ हम लोगों के कल्याण के लिए। इसीलिए कभी भी गलत दृष्टि से इनके बारे सोचना नहीं चाहिए, हमें यही सोचना चाहिए कि देखो कितना महान व्यक्ति था कि वो आकर इतनी कठोर लीला की उन्होंने, कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान जो भक्त होता है, जो भक्ति करते हैं, भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन देखो आज सारी दुनिया में भगवान का नाम गूंज उठ रहा है। सारी दुनिया में कोई ऐसा कोना नहीं है कि जहाँ भक्त लोग नहीं हैं। मेरा खुद का एक अनुभव है कि जब 9/11 का हिस्सा हुआ तो मैं 9/11 के दिन में न्यूयॉर्क में था, और उस दिन कुछ हमारे परिवार के लोग थे, कुछ भक्त लोग थे, उनको लेकर मैं वो ट्विन टावर में ही जा रहा था, मैं उस ट्विन टावर में जा रहा था, लेकिन किसी वजह से भगवान ने हमारे वहाँ जाने की जो टाइमिंग था उसको डिले कर दिया। हम लोगों को 8 बजे आना था, 9:30 बजे तक सब लोग तैयार नहीं थे भक्त लोग, तो हम लोग निकले नहीं थे। तो जब हम निकल रहे थे तो एक जो होटल का मैनेजर था वो भाग के आया कि आपने सुना जो ट्विन टावर है ना उसके अंदर एक प्लेन लगा हुआ है, वहाँ आग लगी है। तो जहाँ भी हम होटल में खड़े थे वहाँ से ट्विन टावर दिखते थे। ट्विन टावर का मतलब 110 मंजिल थे, कहीं से भी दिखता था ना। तो उसमें से ऊपर से धुआं निकल रहा था, इतना दिखाई गया। प्लेन तो नहीं दिखाई गया क्योंकि प्लेन तो अंदर डूब गया था। फिर हम लोग बैठ गए, हमने सोचा चलो आज उधर नहीं जाएंगे, हम लोग टॉम्सकिन स्क्वायर पार्क में चले जाएंगे। हमारा प्लान यह था कि पहले ट्विन टावर में जाएं फिर बाद में टॉम्सकिन स्क्वायर पार्क में जाएं। अभी देखो प्रभुपाद जी ने कैसे प्लान बदल दिया, कैसे हम सब लोगों को बचा गया। अगर हम लोग 1 घंटे पहले पहुंच गए होते तो क्या हमारी स्थिति होती, कोई चांस नहीं था हमारे लिए बचने का। और जब हम एक्सप्रेस वे है, वहाँ ब्रुकलिन एक्सप्रेस वे है, उसकी ऊपर जब गाड़ी चढ़ी तो वहाँ सब एकदम ट्रैफिक जाम हो चुकी थी और वहाँ से भी ट्विन टावर एकदम क्लियर दिखते थे। और दिख रहे थे कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर आसपास में घूम रहे थे। तो जो हेलीकॉप्टर घूम रहे थे उसमें से हमें कोई एक और जो दूसरा प्लेन लगा दूसरे टावर में वो दिखाएगा कि प्लेन आ रहा है और दूसरा प्लेन टावर में लगा। जब दूसरा प्लेन टावर में लगा तो कुछ ही समय में एकदम से अंधकार हो गया, क्योंकि वहाँ प्लान डिटेक्ट था कि हर फ्लोर में एक एक बॉम्ब रखा गया था। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आपको बहुत लंबा कोई बिल्डिंग है उसको गिराना है तो हर फ्लोर में बिल्डिंग बॉम्ब रखे जाते हैं, उसका टाइमिंग किया जाता है। तो जैसे एकदम से एक के बाद एक बॉम्ब जब फूटता है तो बिल्डिंग एकदम नीचे गिरता, साइडवेज नहीं गिरता है। तो ऐसे सारा बिल्डिंग गिर गया। बताते हैं कि कुछ 50,000 लोगों की वहाँ हत्या हो गई थी, उसमें 50,000 लोग मर गए। हम सोचते थे 50,000 बहुत ही है ना, कम तो नहीं है ना। लेकिन आपको ये मालूम है कि हर रोज रात को हम सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उस वक्त तक 1.5 लाख लोग अपना देह छोड़ के चले जाते हैं हर रोज। हर एक घंटे में 6,000 लोग अपना देह को छोड़ के जाते हैं। सोचिए, समझिए। आज कृष्ण बलराम को धन्यवाद करिए कि आज हमने आपने हमारी आँख को खुलने दिया, आज हमें आपके दर्शन मिले, आज हम आपके सामने आकर आ पाए, दर्शन कर पाए, गुरु पूजा में आ पाए, वहाँ श्रील प्रभुपाद जी की पूजा में हमें साधु संग मिला और अवसर मिला जिसके द्वारा हमको कीर्तन का लाभ मिला। आज हम भागवतम की कथा सुन रहे हैं, इसलिए हमें गुरु और गौरंगा को धन्यवाद करना चाहिए। सदाचार के रास्ते पर चलना है, आत्मपरायण के रास्ते पर चलना है, महत्वपूर्ण बात है, समझने की बात है। जो हम अगर हम आत्मपरायण हमेशा हर वक्त हर श्वास में सोचेंगे कि आत्मपरायण होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। एक क्षण भी अगर हम देह परायण में उतर गए तो तुरंत माया आपको झपट लेती है। एक क्षण, एक घंटा नहीं, एक दिन नहीं, एक क्षण भी अगर हमारा मन भटकता है, हल्का सा भी भटक आ जाती है, झटका लग जाता है, तो तुरंत जैसे हम सोते हैं कि आज जप नहीं हो पाएगा, है ना, होता है ना कभी कभी आज जप नहीं हो पाएगा, शेर घूम रहा है, बहुत काम है घर में, बाहर जाना है, प्रचार करना है, ट्रेन पकड़नी है टाइम में, कितने बहाने होते हैं, अनगिनत बहाने हमारे मन में एकदम से आते, हर रोज आते, हर वक्त आते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आप सोचिए कि हम सोच रहे हैं कि भगवान का नाम नहीं लेना है, मतलब कि भगवान के साथ में संग नहीं करना है आज मुझे, समझिए। जब भी हम सोचते हैं कि भगवान का नाम नहीं करना है, भगवान का जप नहीं करना है, भगवान की कथा नहीं सुननी है, भगवान के कीर्तन में नहीं शामिल होना है, आज दर्शन नहीं करेंगे तो चलेंगे, मैं तो 10 साल से वृंदावन में रह रहा हूँ, हर रोज दर्शन करता हूँ, एक दिन दर्शन नहीं करूँगा तो क्या होएगा, राइट, है ना, मन बड़ा दुष्ट है हमारा। लेकिन उसी क्षण में माया बोलती, अच्छा बच्चा आ जाओ, हमारी गोद खुली पड़ी है तुम्हारे लिए, खूब भटके, कई योनियों से तो भटक रहे हो और कुछ और योनियों भटक लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस यही तो मेरा कैरियर है, अगर आप सब लोग मुक्त हो जाओगे तो मैं क्या करूंगी, नहीं। देखिए भगवान सच्चिद आनंद विग्रह है, शिल प्रभुपाद जी बोलते कि भगवान सच्चिद आनंद विग्रह है और हम छोटे से रूप में एक जीव आत्मा है, वो उनके अंश है। क्या है? हम उनके अंश है, क्योंकि भगवान सच्चिद आनंद विग्रह है तो अंश के रूप में हम लोग भी सच्चिद आनंद विग्रह है, लेकिन हम उसका अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? कारण क्या है? अभी 9 बजे प्रसाद होएगा ना, तो हम लोग सारे रावी जैसे करेंगे ना, तो सब लोग भागेंगे प्रसाद पाने के लिए, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं चलेगा, अभी नहीं जाऊंगा, भूख तो लगे लेकिन नहीं जाऊंगा, तो फिर दोष किसका है? ये लोग जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं उसका है कि मेरा है दोष? जब भगवान सच्चिद आनंद आपको बताते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ, जब भगवान बोलते कि सर्वधर्मम परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष ही श्यामी महासुच, सर्व पापों से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, सिर्फ एक क्षण जैसे माया के पास जाते हैं ना, ऐसे ही एक क्षण लेकर मेरी शरण में आ जाओ तो तुमको मैं तुरंत मुक्त कर दूंगा। अजामिल का इतना अच्छा उदाहरण है, अनजाने में, जाने में लेकिन अनजाने में। दीनबंधु प्रभु क्लास दे रहे थे तो बता रहे थे कि एक पक्षी विष्णु भगवान के मंदिर की अनजाने में परिक्रमा कर रहा था। कौन? पक्षी, मनुष्य नहीं। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको मुक्ति दे दी पक्षी को, कि इसने मेरी भक्ति की है, परिक्रमा की है इसने मेरी। परिक्रमा का महत्व समझिए। देखिए अब जब हम लोग वृंदावन में आते हैं, वृंदावन में रहते हैं, तो परिक्रमा तो होनी होनी चाहिए। आपको पता नहीं किस रूप में किस क्षण भगवान एकदम से आपकी तरफ देखेंगे और आपको मुक्त कर देंगे। प्रभु जी बता रहे थे मुझे पहले कि एक चूहा और जो घी लैंप होती है ना, दीप होता है, वो उसको पकड़ के भागने लगा और जल चुका, तो भगवान ने उसको भी मुक्त कर दिया। जो जीव आत्मा उस चूहे के शरीर में थे उनकी भी मुक्ति हो गई, क्योंकि भगवान ने सोचा चलो ये दीवा उठाकर मेरी आरती कर रहा है। ठीक है, चूहा बनने की हम लोग जरूरत नहीं है, करनी है तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन ये है भगवान की कृपा। ये तो बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। क्या हमें उस कृपा को प्राप्त करना है कि नहीं, हमारे हाथ में है। हमें हमेशा दूसरों को देखते तो उनका दोष देखते हैं, ये नहीं देखते कि अच्छाई किया है, दूसरों में अच्छाई देखिए, यही तो फर्क है दिव्य मार्ग और भौतिक मार्ग का। जो दिव्य मार्ग पर चलता है वो हमेशा जिसको भी देखता है उसको ये देखता है कि माता के शरीर में आत्मा है और परमात्मा है, परमात्मा बैठे हैं, सुरिधम सर्वभूता नाम परमात्मा बैठे हैं, प्रणाम सर माता को, ये प्रभु आपके सबके शरीर में आत्मा है, परमात्मा है, जीवात्मा एक भगवान का अंश है, आप सबको भी प्रणाम। अगर मेरा मन शुरू से ऐसे, मेरा दिन शुरू से ऐसा होगा, जिसको भी मैं देखूं इस दिव्य दृष्टि से मैं देखूंगा तो पाप कर्मों से मैं बच जाऊंगा, नहीं तो अपराध ही अपराध है, अपराधों से बचो, अपराध नहीं करना है, अपराधों से हमको सबको बचने का है। और ये अपराध से हम कैसे बचेंगे? हम लोग गाते हैं ना हर सुबह, साक्षात् दरित्वेन समस्त शास्ते युक्तस्तथा भावयतेव साध्वी किन्तु प्रभोया प्रियैव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द। गुरु के चरण को ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो कि सोए भी हुए हैं ना तो हमारे आँख बंद हुए हैं और गुरु के चरण हमारे हाथों में, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान के बराबर हैं, और भगवान की कृपा पानी है तो हमें गुरु के द्वारा ही मिलेगी। हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, ये कृपा अगर हमें पानी है तो गुरु के द्वारा ही मिलेगी। इसलिए ये जो हम लोग कीर्तन करते हैं उसको समझिए, जो भी हम गुरु पूजा करते हैं, मंगल आरती करते हैं, एक एक लाइन, एक एक लाइन की बहुत मतलब महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है। इसको समझिए, उसको अपनाइए ना। जैसे प्रसाद रूम में जाएंगे तो आप प्रसाद को देखते तो नहीं रहोगे ना, हाथ लगाओगे, मुंह में डालोगे, चेंज के टुकड़ों को भी खुश करोगे, मन को भी खुश करोगे, शरीर को भी तृप्ति होएगी। हमारा संबंध है भगवान से, हमारा संबंध है, नित्य संबंध है, मत भूलिए। उस संबंध को जागृत करिए, संबंध है अभिदया फिर परोजना। मतलब अभिदया का मतलब कि जब हमें समझ आते कि हमारे संबंध हैं, हम इनको जानते हैं, कई सालों के बाद मिले हुए हैं, क्योंकि अब हमारी जब जागृति होती है तो संबंध का हमें समझ आता है। तो फिर पहचान करो, जब पहचान हो जाता है तो फिर है, संघ शुरू हो जाता है। ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही तो हमें अभिधेय मार्ग पर ले जाता है। और जैसे हमारी रुचि बढ़ेगी, जैसे हमारी हमारा प्रेम बढ़ेगा, पहले हम लोग मैकेनिकली चांट करते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं, समझते हैं, साधु का संग करते हैं, तो वो जो नाम जप है उनका रस का अनुभव होता है। और जब रस का अनुभव होता है तो आपको कोई भी, आपका मन भी नहीं रोक पाएगा नाम जप करने से। हनुमान को कौन रोक सकता है राम का नाम जपने से? हरिदास ठाकुर को कौन रोक सकता है नाम जप करने से? प्रहलाद महाराज को कौन राक्षस रोक पाया? हिरण्यकशिपु भी नहीं रोक पाया एक 5 साल के बच्चे को, क्योंकि नाम रस था, नाम का रंग लगा हुआ था, नाम का अनुभव किया उन्होंने। नारद मुनि जी की कृपा थी, किसकी कृपा थी? उनके गुरु की कृपा थी। जैसे ही हम लोग दीक्षा लेते हैं गुरु से, तो उसी वक्त हमारे सब पापों का नष्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक वैष्णव भक्त बन के आगे बढ़िए, क्रिश्चियन बन के मत बढ़िए कि अभी तो गुरु मिल गया है, अभी थोड़ा और पाप कर लेते हैं, पाप तो उसने हमारा सफाई करता ही रहना है, झाड़ू तो है उसके हाथ में, ऐसे नहीं समझना है। गुरु की सेवा करनी है, गुरु का नाम बढ़ाना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, और इसी जन्म में हमें वापस गोलोक धाम जाना है। कितने लोग नहीं जाना चाहते हो? सबको जाना है पक्का? तो ये हरि नाम की जो टिकट है ना, उसको खरीद लो अच्छी तरह से, दिल से खरीद लो, मन से नहीं, दिल से खरीद लो। आप दिल से खरीद लोगे ना तो भगवान स्वयं आपको वापस वो धाम ले जाएंगे। देखो अजामिल, अनजाने में भगवान का नाम लिया, हम तो जानकर भगवान का नाम लेंगे तो क्या क्या भगवान हम हमारे लिए नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, आप सबका धन्यवाद। किसी का कोई सवाल या तो कमेंट है तो 2 मिनट है हमारे पास। ये पढ़िया तो लास्ट में हम ये एक भागवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे, इसके बाद आप सबको
इस जगत में सर्वोच्च लोग से लेकर निम्नतम शरीर लोग दुखों के घर है, यह जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है, किंतु हे कुंतीपुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है व्यायाम पेट को भी धर्म नहीं लेना है। तात्पर्य समस्त योगी हो के चाहे वे कर्मयोगी हो ज्ञान योगी या हठयोगी हो अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावना में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है तभी वे कृष्ण केंद्रित को धाम को जा सकते हैं जहाँ से वे फिर भी वापस नहीं आते हैं। किंतु जो सर्वस्व भौतिक लोगों तथा देव लोगों की प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होता रहता है जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोग को जाते हैं उसी तरह ब्रह्मलोक चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोगों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छंदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है उसे मनुष्य ब्रह्मलोक की प्राप्त कर सकता है किंतु यदि ब्रह्मलोक में बहन कृष्ण भावना में का अनुष्ठान नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लड़ना पड़ता है। जो उच्चतर लोगों में कृष्ण भावनामित में प्रगति करते हैं वे क्रमश और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय पे नित्य परम धाम को घेर दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भागवत गीता भाषण में यही श्लोक उद्धृत किया है ब्रह्मन ब्राह्मण सर्वे तो सर्वे प्रयत्न तिष्ठसय पर यंत कृतात्मनः प्रविशन्ति परम पदम। यह इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्तों अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांडों को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं।
जय श्री भोपाल की जय गौर प्रेमानंद जी।